अध्याय, अधूरी बातचीत, अधूरी साजिश। रात और सुबह के बीच की वो धुंधली बेला थी, जब अंधेरे को छूने वाला उजाला बस आने ही वाला होता है, लेकिन सब कुछ अब भी स्याह लगता है। रैना की टैक्सी शहर के उस छोर की ओर मुड़ी, जहां बहुत साल पहले की जिंदगी अब खंडहर बन चुकी थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना बांग्ला था, ईंटों से बनी दीवारें जो अब सफेदी खो चुकी थीं। छत के मुंडेरों पर जालों की पकड़ थी और चारों ओर सूखे पत्तों की चादर बिछी हुई थी। गाड़ी ने जैसे ही बंगले के सामने रुकने की आहट दी, रैना का दिल थोड़ी देर के लिए सन रह गया। यही है वही जगह जहां कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात हुई थी, एक सौदे की, एक घुटन भरी मजबूरी की और आज शायद फिर किसी नए जाल की शुरुआत। दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के धीरे धीरे खुद ही खुला। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है, लकड़ी की हर सीढ़ी पर पांव रखते ही चरमराहट की एक कराहसी निकलती है, जैसे ये बांग्ला अब भी हर आने वाले की कहानी सुन लेता हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ दूर के एक बड़े हॉल में जलती एक कमज़ोर सी पीली रोशनी, शायद एक टेबल लैम्प। रैना अंदर दाखिल हुई। हॉल बहुत बड़ा था पर बेहद खाली। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी लटकी हुई थीं और बीच में रखा गया एक लंबा सा सोफ़ा अब भी अपनी राजसी परछाई समेटे खड़ा था। और वहीं सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था। आधे अंधेरे में उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। उसकी पीठ सीधी थी, हाथ उसकी जांघों पर रखे थे और उसकी सांसें शांत लेकिन नियंत्रित सी लग रही थीं। वो आ चुका था। रैना ने पर्स कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, मैं आ गई हूं। कुर्सी पर बैठा वो शख्स कुछ नहीं बोला। हॉल में हवा भी जैसे ठहरी हुई थी। तुमने कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो पापा का इलाज, उसने वाकया अधूरा छोड़ दिया। अब आवाज़ आई, वही जानी पहचानी खामोश जहर से भीगी आवाज़ जिसकी वजह से रैना ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने कहा था क्योंकि मैं जानता था तुम आओगी। उसकी आवाज़ में ना आदेश था ना दया, बस एक खामोश यकीन। रैना ने गहरी सांस ली। अब और क्या चाहिए तुम्हें, मैं अपना नाम मिटा चुकी हूँ, अखिल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पापा तक से मुँह नहीं मिला पा रही, और क्या? कुछ सेकेंड सन्नाटा रहा। क्यों लग रहा है कि तुम खुद से ये सवाल पूछ रही हो, मुझसे नहीं? रैना सन रह गई। तुम चाहते क्या हो, उसकी आवाज़ कांपने लगी। सब कुछ तो दिया मैंने, अब और क्या? वो आदमी अब कुर्सी की पीठ से थोड़ा झुका। तुमने जो दिया वो बस एक शुरुआत थी रैना। उसने उसका नाम लिया बहुत हल्के से, जैसे उसकी पहचान भी कोई समझौता हो। और मैं क्या किसी का नाम भी जान सकती हूँ? अब की बार कुछ सेकेंड की चुप्पी आई। रैना को लगा कि वो हंसा, बहुत धीमे लेकिन एक ठंडी सेहरन सी हंसी। नाम जरूरी नहीं होता, जरूरी है काम। जो तुमने किया वो सिर्फ एक चेहरा बदलने के लिए था, अब तुम्हें खेल चलाना है, बहुत गहरा खेल। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, रैना की आवाज़ में अब साहस था, थकान भी। पर तुम पहले ही बन चुकी हो और अब तुम वापसी नहीं कर सकती। वो शख्स धीरे से उठा लेकिन फिर कुर्सी पर बैठा ही रहा, चेहरा अब भी अंधेरे में। अखिल अभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हो। रैना को जैसे सन्नाटा काटने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कोई मतलब नहीं समझाता, मैं सिर्फ दरवाजे खोलता हूँ। चलो या मत चलो तुम्हारा फैसला, लेकिन जो दरवाज़ा आज बंद किया वो फिर कभी नहीं खुलेगा। उसके शब्द भारी थे जैसे पत्थर। रैना ने कांपती उंगलियों से पर्स को और कस लिया। और अगर मैं जाना चाहूँ हमेशा के लिए? तब तुम्हारे पिता के लिए दवाइयाँ नहीं आएंगी, डॉक्टर बदल जाएगा और उनकी सांसें वो किसी रिकॉर्ड में गुम हो जाएंगी। रैना की आंखें भर आईं। तुम इंसान हो या शैतान? उसने पूछा आंसू रोकते हुए। मैं कोई नहीं हूं, बस एक परछाई हूं जो तब तक साथ चलती है जब तक रोशनी छूटी हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रैना अब कुछ नहीं बोल सकी, उसकी आंखें पथरा गई थीं और पैर जम से गए थे। वो जानती थी ये सिर्फ एक शुरुआत है। कुर्सी पर बैठा वो शख्स अब भी उसी मुद्रा में था और बातचीत अधूरी थी।